मेरे अत्यंत घनिष्ठ मित्रों नमस्कार। AFEIS के आज 31 जुलाई 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज शुक्रवार का दिन है और शुक्रवार को मुझे आप सबको कुछ सूचनाएं देनी होती हैं और सूचनाएं ये हैं कि कल परसों यानी कि शनिवार और रविवार को और साथ ही इस बार सोमवार को भी डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आएगा। सोमवार को इसलिए कि सोमवार को रक्षाबंधन का त्यौहार है। आप सब उन्मुक्त भाव से रक्षाबंधन के त्यौहार को सेलिब्रेट करें। मेरी ओर से रक्षाबंधन की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। तो दोस्तों 3 दिनों तक डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आएगा, लेकिन जो प्रेस क्लिपिंग्स हैं वो आपको जिस पैटर्न पर मिलती रही हैं उस पैटर्न पर प्रेस क्लिपिंग्स मिलती रहेंगी। और साथ ही साथ कल आप लोगों को एक साप्ताहिक प्रश्न उपलब्ध कराया जाता है जो मेन एग्जामिनेशन के पैटर्न पर होता है और उसका पर्पस होता है कि आप तैयारी के रूप में आंसर राइटिंग को भी शामिल कर सकें। मेरे पास लगातार आंसर राइटिंग को लेकर के फ्रेंड्स क्वेश्चंस आते रहते हैं और जो स्वाभाविक भी है कि आपकी ऐसी जिज्ञासा होती है कि हम कब से आंसर राइटिंग की शुरुआत करें। तो देखिए सीधी सी बात है कि आंसर आप कब लिख पाएंगे। कई बार मैंने इसी रूप में आप लोगों के सामने इस शंका का समाधान प्रस्तुत किया है। देखिए आंसर आप तभी लिख पाएंगे जब आप उसके बारे में कुछ जानते होंगे। कुछ जानते होंगे का मतलब है कि आपकी तैयारी हो चुकी होगी, तभी आप उसके बारे में कुछ लिख सकेंगे। अब देखिए जब तैयारी हो चुकी होगी कि मैं बात कर रहा हूं तो इसके बारे में 2-3 पॉइंट आप ध्यान रखें। तैयारी हो चुकी होगी का क्या मतलब है, मैं सिविल सर्विस को ध्यान में रखकर के आपसे बात कर रहा हूं। पहली बात तो यह है कि आप एक बार सिलेबस पूरा पढ़ चुके हों और आपकी जानकारी में भी आ गया हो, यानी कि आप समझ भी चुके हो। यह नहीं कि केवल एक रीडिंग कर ली नॉवेल की तरह और आप मान लें कि आपकी तैयारी हो चुकी। नहीं, आपको अब ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरी तैयारी हो चुकी है, यानी कि मैंने सारे विषयों को पढ़ लिया है और उनके बारे में मैं जानता हूं, चैप्टर्स मुझे मालूम है, कुछ तथ्य भी मेरे दिमाग में है, तब हम आप उसे कहेंगे कि मेरी तैयारी हो चुकी है। अंडरलाइन कीजिए सारे विषयों के शब्द का इस्तेमाल मैं कर रहा हूं, सारे विषयों की। जैसे मान लीजिए कि आप कॉन्स्टिट्यूशन पर एक प्रश्न आपको दिया गया है और आप उसकी आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की आपकी अच्छी तैयारी हो गई हो, लेकिन अगर करंट अफेयर्स पर आपकी पकड़ नहीं है, दूसरे विषयों के बारे में आप थोड़ा बहुत नहीं जानते हैं, तो आप जो प्रश्न पूछा गया है हो सकता है कि उसका आंसर तो लिख दें, लेकिन आप एक जो मुकम्मल आंसर होता है, जो एक समग्र उत्तर होता है, वो शायद नहीं लिख पाएंगे। क्योंकि यही सिविल सर्विस के आंसर राइटिंग की एक चुनौती भी होती है कि कैसे आप अपने विषय को, अपने उत्तर को ज्यादा से ज्यादा समसामयिकता के साथ जोड़ पाते हैं। तो जब मैं कह रहा हूं कि संपूर्ण तैयारी, तो उसका मतलब ही है कि सभी विषयों की एक बार आपके पास तैयारी हो गई हो, उन विषयों की आपके अंदर समझ विकसित हो गई हो और लगातार आप करेंट अफेयर्स से जुड़े हुए हों, तब आप मान करके चलिए कि ये आपकी संपूर्ण तैयारी है और इसके बाद फिर आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए। अदरवाइज देखिए कोई बहुत लाभ आप इससे नहीं ले सकेंगे और इसमें हड़बड़ाने की भी बात नहीं है। अगर आप मान लीजिए कि मेन एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं और मेन एग्जामिनेशन में बैठने से 6 महीने 8 महीने 9 महीने या साल भर पहले भी आंसर राइटिंग की शुरुआत कर देंगे तो आप इसमें धीरे धीरे परफेक्ट होते चले जाएंगे और आपका काम चल जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ सूचनाएं थी। आज के मुख्य विषय के तहत में जो शिक्षा नीति जो आई है उस पर थोड़ी सी ओपन बातचीत करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक घटना के बारे में आपसे कुछ डिस्कस करना चाहूंगा दोस्तों, वो मॉरिशस को लेकर है। कल के दूरदर्शन न्यूज में भी आपने देखा है और बकायदे रेडियो न्यूज में भी है और आज के अखबारों में उसे बहुत थोड़ी सी जगह मिली है। देखिए मैं यहां एक बात बता दूं कि आप न तो दूरदर्शन न्यूज को अपने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए एक कंप्लीट मीडिया मानिए, न आप रेडियो न्यूज को कंप्लीट मानिए और न न्यूज पेपर को कंप्लीट मानिए। ऐसा नहीं कि इसमें से किसी एक माध्यम से आपका काम चल जाएगा, ये तीनों माध्यम आपको चाहिए और तीनों माध्यम एक दूसरे के पूरक है, कोई प्रतिस्पर्धी नहीं है, तीनों एक दूसरे के पूरक है। कभी कुछ चीजें उसमें आ जाती हैं तो इसमें नहीं आती हैं, इसमें आ जाती हैं तो उसमें नहीं आती हैं, इन तीनों पर आपको बकायदे ध्यान देना होगा। अब आप देखिए कि दूरदर्शन न्यूज में बकायदे मॉरिशस के बारे में दिखाया गया, हमारे प्रधानमंत्री जी के भाषण हैं, फिर उनके वहां के प्रधानमंत्री के भाषण हैं और फिर कुछ और भी पॉइंट्स दिए गए। न्यूज़पेपर में उसे इतनी जगह नहीं मिली। ठीक है, न्यूज़पेपर का रीडर ग्रुप अलग है, हमारा नेशनल इंटरेस्ट है तो बकायदे ऑफिशियल मीडिया में उसे प्रधानता दी ही जानी चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे? सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले एक प्रत्याशी के रूप में, एक प्रतियोगी के रूप में, डेफिनेटली आपको राष्ट्रीय एंगल लेकर चलना होगा, अपनी राष्ट्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखना होगा, रीडर के इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रखना। अखबार तो रीडर के इंटरेस्ट को लेकर के चलेंगे, जो दूसरे हमारे चैनल्स हैं वो भी व्यूअर्स के इंटरेस्ट को लेकर के चलेंगे, लेकिन जो हमारा ऑफिशियल मीडिया है, जो दूरदर्शन है, वो राष्ट्रीय इंटरेस्ट को लेकर के चलता है। राइट, तो मुझे लगा कि ये भी मैं क्लियर कर दूं। तो दोस्तों, जो मॉरिशस है, थोड़ी सी मैं आपको इसकी बैकग्राउंड बताना चाहूंगा। मॉरिशस में गया हुआ हूं, ये मेरा सौभाग्य। उस समय शंकर दयाल शर्मा जी शायद उपराष्ट्रपति थे या राष्ट्रपति बने थे, थोड़ा सा मैं मिस कर रहा हूं। 150 वर्ष वहां भारतीयों के पहुंचने का वो उत्सव मनाया जा रहा था, तो उस उत्सव में शंकर दयाल शर्मा जी गए थे, तो मुझे मॉरिशस को बहुत नजदीक से देखने का, महसूस करने का और वहां के लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला है, तो मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा। फ्रेंड्स, जब पूरी की पूरी दुनिया में उपनिवेशवाद फैल रहा था, आपको मालूम है कि ब्रिटेन है, फ्रांस है और आपका जो हॉलैंड है, ये कुछ ऐसे देश थे, स्पेन, ये सब के सब दुनिया के दूसरे देशों में जाकर के अपना आधिपत्य स्थापित कर रहे थे। राइट, भारत में जैसे इंग्लैंड आ गया, हालांकि देखिए इससे पहले फ्रांस वगैरह आ चुके हैं, है ना, उनमें आपस में झगड़ा हुआ और फिर अंततः इंग्लैंड को सफलता मिली, ब्रिटेन को सफलता मिली कहना चाहिए, और ब्रिटेन यहां का शासक बन बैठा। तो इस तरह से इन्होंने दुनिया के बहुत से हिस्सों पर अधिकार किया, तो उसमें आईलैंड भी थे, कुछ ऐसे जगहें थी, स्थान थे जहां पर आबादी नहीं थी लेकिन जमीन थी, तो अब वहां ये सब क्या करें? तो इन लोगों ने उन स्थानों से लोगों को उन आइलैंड्स पर भेजना शुरू किया जहां पर इनका अधिकार था। मॉरिशस से भारत के लोग भेजे गए। मॉरिशस एक छोटा सा आइलैंड है, हार्डली 2000 स्क्वायर किलोमीटर का आइलैंड है। 2000 स्क्वायर किलोमीटर को आप मोटे तौर पर कह लीजिए कि 200 किलोमीटर लंबा और 100 किलोमीटर अगर कोई चौड़ा है, या 50 किलोमीटर लंबा और 400 किलोमीटर चौड़ा है, तो दो हो जाएगा आपका, कैलकुलेट कर लीजिएगा, मतलब बहुत छोटा सा है 2000 स्क्वायर किलोमीटर। मैथमेटिक्स में तुरंत करके बता रहा हूं तो शायद गलत हो जाए, आप देख लीजिएगा, 2000 स्क्वायर किलोमीटर कोई ज्यादा होता नहीं है। राइट, 2000 स्क्वायर किलोमीटर मोटे तौर पर जो, और आबादी भी हो लगभग 13.5 लाख की आबादी, हमारे किसी भी शहर की आप कल्पना कर लीजिए जो 14-15 लाख की आबादी का शहर हो, केवल इतना बड़ा देश है। तो वो आइलैंड था, तो आइलैंड में हमारे यहां से लोगों को भेजा गया। कई जगह थे उसमें, मॉरिशस भी है, ट्रिनिडाड टोबैगो है, फिजी है, इन सब का नाम आप सुनते हैं। इसीलिए न्यूज में आपने सुना होगा कि भारतवंशी, मतलब ये जो अभी प्रधानमंत्री हैं, कभी राष्ट्रपति बनते हैं कभी और, तो ये ठीक है अब तो वहीं जाकर के बस गए, लेकिन ये भारतवंशी हैं, भारत से कभी गए थे। तो इन लोगों को बकायदे कॉन्ट्रैक्ट पर भेजा जाता था, वहां वो चले जाते थे और फिर मजदूरी करते थे, अब वहां से वापस नहीं आ पाते थे, और ब्रिटेन का आप समझ लीजिए कि इंटरेस्ट भी इसी में था कि वो वापस ना आए, तो वो वहीं बस जाते थे, वहीं रहने लगते थे, और उनकी बड़ी दुर्दशा होती थी, यानी कि वहां वो बहुत अच्छी स्थिति में रहते थे। तो दोस्तों, वो वहीं रह गए और फिर रहने के बाद अब धीरे धीरे विकसित होने लगे। तो मॉरिशस की एक जो भाषा है, बड़ी इंपॉर्टेंट भाषा है, वो भोजपुरी, जो नंबर 2 पर है। मॉरिशस में जो सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा उसे कहा जाता है क्रियोल। दूसरे नंबर पर जो आती है, 84-85% लोग क्रियोल बोलते हैं, लेकिन 5% लोग हैं जो भोजपुरी बोलते हैं। तो हमारे यहां के भोजपुर क्षेत्र से वहां बहुत लोग गए हैं, तो वहां लोगों को आप भोजपुरी बोलते हुए सुनेंगे। जब आप ट्रेवल करेंगे मॉरिशस में, तो देखेंगे कि आपको बकायदे लोगों के आंगन में तुलसी के पौधे लगे हुए दिखाई देंगे, और दूर से ही आपको झंडा लगा हुआ दिखाई देगा, भगवा झंडा लहरा रहा है, और वहां बकायदे आपको गंगा तालाब भी दिखाई देगा। हर व्यक्ति जब यहां से गया तो कहते हैं 3-4 चीजें लेकर के गया था, एक तो कंठी माला उसके पास थी, दूसरा लुटिया उसके पास थी जिसमें गंगा जल था, और सबके पास हनुमान चालीसा और रामचरित मानस की प्रतियां थी। तो वहां इसका बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ा। जब आप मॉरिशस जाएंगे तो आपको कभी कभी लगेगा कि आप कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत में ही आ गए हूं। तो दोस्तों, वहां के सुप्रीम कोर्ट की जो बिल्डिंग बनी है वो भारत की सहायता से बनी है, भारत ने उसमें $3 करोड़ की सहायता दी है, और भारत और मॉरिशस के संबंध बहुत ही अच्छे संबंध है। मॉरिशस की जो लोकेशन है वो हिंद महासागर में, आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर हिंद महासागर में मॉरिशस है तो भारत के लिए वो कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, स्ट्रेटेजिक है ना, सामरिक दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। तो मैंने थोड़ी सी बात आपको मॉरिशस के बारे में बैकग्राउंड बताई है। दोस्तों अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और मुख्य विषय पर मैं बहुत ज्यादा आपसे चर्चा करने नहीं जा रहा हूं। शिक्षा नीति, दोस्तों इसके बारे में कल हम लोगों ने थोड़ी सी बातें की थी। आज अखबारों में आपको शिक्षा नीति पर अब आप देख रहे हैं कि ढेर सारी चीजें पढ़ने को मिलेंगी। एडिटोरियल कमेंट्स आने शुरू हो गए हैं, अभी एडिटोरियल कमेंट्स आए हैं, बहुत जल्दी एडिटोरियल आर्टिकल्स भी आपको पढ़ने को मिलेंगे। इस पर अब डेफिनेटली बहस होगी और बहस होनी भी चाहिए, कितना अच्छा है, कितना बुरा है, क्या कमियां हैं, क्या इससे फायदे हो सकते हैं, क्या क्या और होने चाहिए थे। एक तरह से विचार मंथन होगा। मेरा सजेशन आप सबको ये है कि बकायदे आप बहुत ध्यान से इन आर्टिकल्स को पढ़ें और इस पर नोट्स बनाते चलें और थोड़े से व्यापक नोट्स बनाएं। जब मैं नोट्स बनाने की बात कर रहा हूं तो मेरा मतलब पॉइंट्स पॉइंट्स से है। आप बिंदुवार नोट्स बनाएं, या यूं कह लीजिए कि एक एक दो दो लाइन लिखते चलें। ये मत सोचिए कि आपको पूरा पैराग्राफ लिखना है या उसके पूरा जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है वो नोट करना है, नॉट एट ऑल। जब आप लगातार इस तरह के आर्टिकल्स और एडिटोरियल कमेंट्स पढ़ते रहेंगे तो आप देखेंगे कि विश्लेषण की क्षमता आपको ऑलरेडी डेवलप होती आपकी चली जाएगी। यहां आपको दो पक्ष ध्यान में रखने, पहला तो यह है कि अभी जो बातें कही जा रही हैं, दूसरा इसका पक्ष है कि अभी तक हमारी जो शिक्षा थी उसकी क्या कमियां थी। कमियां ना भी कहें तो आप यूं कह लीजिए कि उसका स्वरूप क्या था, क्योंकि हमें यह देखना होगा कि अभी हमारे पास जो अपनी शिक्षा की का परिदृश्य है वो कैसा है, और अब जो नया परिदृश्य आने वाला है वो हमारे इस पुराने परिदृश्य को कितना बेहतर बना सकता है। यानी कि हमारी शिक्षा नीति की अभी जो कमियां हैं, उसकी जिन बातों को लेकर के आलोचना होती है, क्या वर्तमान शिक्षा नीति उन कमियों की भरपाई कर सकेगी, पहली बात। दूसरी बात कि क्या यह सच में विश्व स्तर की शिक्षा पद्धति का मुकाबला कर सकेगी। टेक्नोलॉजी आ गई है, पहली जो शिक्षा नीति आई थी उस समय टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई थी भारत में, इससे पहले वाली जो 86 में आई है, अब तो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा हावी हो गई है। तो ऐसी स्थिति में ये जो शिक्षा है कितना उसकी मदद कर सकेगी, कितना उससे संघर्ष कर सकेगी, उसका कितना लाभ उठा सकेगी, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें ध्यान में रखते हुए आपको अपने आर्टिकल्स पढ़ने हैं। तो दोस्तों मैं फिलहाल इस पर अभी कुछ भी, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, बात करने नहीं जा रहा हूं। मैं आपके दिमाग को अभी बिल्कुल ओपन रख रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर मैं अपनी तरफ से कोई भी बात कह दूंगा तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग उससे प्रभावित होगा और आपके जो आर्टिकल्स को पढ़ने की जो एक बिल्कुल एक स्वतंत्रता होती है वो बाधित हो जाएगी। तो दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स के क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं: श्रुति अग्रवाल बिजनौर उत्तर प्रदेश से, अनूप राज चांपा छत्तीसगढ़ से, मुकेश यादव उत्तर प्रदेश से, जीनत गोरवड़े थाने महाराष्ट्र से, पवन कांबले सिरढ़ोड़ महाराष्ट्र से, और लक्ष्मण सिंह गुर्जर गंज बासौदा मध्य प्रदेश से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करने से पहले मैं एक सूचना देना चाहूंगा कि अब 3 दिनों बाद आप सबसे मुलाकात हो सकेगी। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था, सोमवार को रक्षाबंधन है। आप पूरे उत्साह उमंग और भावना के साथ इस उत्सव को मनाएं। मंगलवार को फिर मुलाकात होगी। इस बीच अपना और अपने लोगों का पूरा ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें, और साथ ही मेरा अभिवादन भी। नमस्कार।